यहाँ के जो है वहाँ पर सब प्रकार के आदमी है ना, सब प्रकार के वहाँ पर गांव वाले बहुत कम, वो उतना नहीं समझते हैं, जो समझते हैं वही समझते हैं। और यहाँ के
भाव संबंधी
और एक होता है भाव अनुकूल और एक भाव प्रतिकूल,
भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध
और भाव के अविरुद्ध। ये पांच प्रकार के होते हैं। भावमय किसको कहते हैं? कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, कृष्ण मेरे बेटे हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, ये सब भावमय है। यही मूल चीज है। कृष्ण के साथ में हम संबंध रख करके भाव के साथ उनकी सेवा की प्राप्ति होना, ये भावमय है। ऐसे ही श्रवण होगा, ऐसे ही स्मरण होगा, क्या माने, ऐसे ही वैष्णव से संग होगा, वैसे ही उसी जाति के वैष्णव के साथ में संग होगा। जैसे गोपियों का है भाव, कृष्ण के प्रति प्रियतम का भाव। अब जो इस भाव को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण के साथ में हमारा प्रियतम का भाव, जिसका यह भाव है कि कृष्ण हमारे बेटे हैं, तो यशोदा जी का यह भाव है, उस भाव को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कीर्तन करना होगा, ऐसे ही स्मरण करना होगा। जैसे यदि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम भाव है, कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रियतम का भाव है, उस अवस्था में कृष्ण के प्रति रुक्मिणी का भाव छोड़ देना पड़ेगा, बेटे का भाव छोड़ देना पड़ेगा। उसके लिए वैसा कीर्तन नहीं चाहिए, उसके लिए कैसा कीर्तन चाहिए? गोपियों का जैसा भाव है। श्रवण कैसा होगा? गोपियां तो साथ में कृष्ण की जितनी लीला है, ऐसा ही श्रवण, वैसा ही कीर्तन, वैसा ही चिंतन। यदि प्रतिकूल भाव करेंगे तो उसकी साधना में कमी हो जाएगी और वो बुरी। आपको यहाँ से जाना है कलकत्ता और आप यहाँ से अम्बाला के की गाड़ी में बैठ गए तो उल्टा हो गया, नहीं पहुँचे। इसलिए अम्बाला की गाड़ी को छोड़ देना अपराध नहीं है, समझ रहे हैं? अम्बाला की गाड़ी को छोड़ देना ये उचित। इसलिए भक्ति राज्य में बहुत तरह के विचार हैं, किंतु अम्बाला की गाड़ी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोगस गाड़ी है ये, इस पर चढ़ने से हमारा बर्बाद हो जाएगा या कुछ ऐसा नहीं। वो भी गाड़ी ठीक है, ठीक रास्ते में जा रही जाएगी, किंतु हमारे लिए उसको छोड़ देना। इस तरह से साधन में भी है, जो हमारे अनुकूल होंगे इसके लिए भावमयी की सिद्धि के लिए। क्या समाचार है? राग रूपी पथ का की चंद्रिका, चंद्रिका जब प्रकाश होगा तो उसमें पथ दिख पड़ेगा, अन्य तो दिखाई नहीं पड़ता। से भजन और एक अनुपयुक्त पद्धति से भजन, उपयुक्त माने क्या होगा? सरल हिंदी, सही सही है, सही ढंग से। और एक है सही नहीं,
गलत
गलत भी नहीं, उलझुले उलझुले ढंग से,
उलझुलुल
उलझुलुल उलझुलू ढंग से जैसे आ रहा है तो बस। क्रिकेट भी दिन रात खेल रहे हैं, इधर में सिनेमा इत्यादि भी जा रहे हैं, इधर पार्टियों में जा रहे, इधर पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने भी, कभी कभी स्कूल कभी कभी जाते हैं, कभी 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 पाठ्य पुस्तकें देखते हैं, और बाकी सब समय इधर उधर खेल में इधर उधर में रहते हैं। बहुत दिन लग जाएगा, पास नहीं कर सकते। इसलिए उपयुक्त पद्धति से उपयुक्त रूप में यदि साधन भजन होगा तो भगवत प्राप्ति जल्दी से होगी। और अपने मन से करेंगे, मन चारों तरफ में छिटका रहेगा, अनन्य भाव से नहीं होगा। नवरात्रि आए तो देवी की पूजा कर ली, रामनवमी आए तो राम की कर ली, एकांत चित्त से दूसरे किसी तरफ में न भटके। परिश्रम बल की उलझ जुलझ में अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, और इसमें कम होता है, किंतु इसमें आदमी अग्रसर होता है। भजन जहाँ अनन्य भाव यहाँ पर आया, अनुकूल रूप में सब करने लगे, सब संबंध ही करने लगे, श्रवण कीर्तन स्मरण बन लगे, वैसा ही जैसे जहाँ हमको चाहिए। कोई सब्जेक्ट ले लिया है एमए में, साहित्य ले लिया, तो साहित्य में मन लगाना है। अब दूसरा भी विषय इधर उधर देखने लगे तो फिर वो भी अच्छे हैं, ठीक है। How you are feeling Navadvip Parikrama?
Is Navadvip Parikrama feeling perfect?
You have done before?
No. Yeah, a little in the past with ISKCON devotees. But not full, not like this one.
You have done on foot?
Asir Kadam Lothar Dhyanak Veer Adbhut Alupad Adbhut
अद्भुत रस, अद्भुत मैंने होता है विचित्र, जिसको देख करके आदमी एकदम तक जाए, जिसको कभी देखा नहीं देख करके हृदय में कांप आ जाए, या कोई ऐसी चीज अद्भुत हो जो कि बड़ी सुहावनी हो, सब प्रकार से अद्भुत होता है, अच्छी या बुरी। अब बुरी में देखो, एक सुंदर सी लड़की है, बहुत मधुर रूप से गा रही है, और गाती गाती सुंदर वेश में, गोपी वेश में सजी हुई नंद भवन में पहुंची, और यशोदा जी के लाल को उठा लिया गोदी में, प्यार करने लगी। यशोदा जी क्यों देख रहे हैं, जैसे ये कहां देवी उतरी आकाश, यही इसकी योग्य मैया है, मैं इसकी योग्य मैया नहीं, और इतने में अपना स्तन दे दिया। यशोदा मैया देख करके आश्चर्य, इतनी सुंदर औरत कहां से आई, और इतने में कृष्ण ने जब चूसा, बड़ी भयंकर होकर के मीलों में उसका लंबा चौड़ा शरीर हो गया, उसके स्तन पहाड़ जैसे हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, विराट रूप धारण करके देखा, जैसे एकदम बड़े बड़े दांत, नख बड़े बड़े, काली एकदम, देखा क्या, और अरे ये अभी इतनी सुंदरी लड़की और ये ऐसे हो गई, और तब एकदम मूर्छित हो गई। ये अद्भुत है। हिरण्यकश्यपु के दरबार में प्रहलाद महाराज जी से और हिरण्यकश्यपु से बातचीत चल रही थी, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता, बड़ा हठीला है, मैंने तुमको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, किसके बल पर मेरी अवज्ञा करता है, एक बात नहीं मानता है, बतलाओ तो तुम्हारा बल क्या है, किसके बल पर तू इतना बलि हो रहा है। प्रहलाद महाराज ने कहा जिसके बल पर आप बलियान हो रहे हैं, मैं भी उसके बल पर, प्रभु ही जगत में सब बलों के बल हैं, मैं उनके बल पर आश्रित हूँ। कहाँ है वो? तो सर्वत्र है, सर्वत्र है। हाँ, आपने भी है, हमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, जो कुछ पृथ्वी में है उस सब में है, खड़ग में है, खम्भ में है सब। अच्छा, तो तेरी रक्षा करे तो तलवार उठाया या गदा उठाया का, जैसे अभी तुमको मार डालता हूँ, देखे तो जब ही उठा तो ही प्रहलाद महाराज जी की बात को रक्षा करने के लिए उसी खम्भ में से जिसमें उसने मारा, खम्भे में है तो हाँ है, अच्छा तो खम्भे को मैं पहले चूर्ण करता हूँ, यदि होगा तो उसमें वो चूर्ण भी चूर्ण हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसे मारा तो उसी में से भयंकर नाद करता हुआ विराट रूप, हजारों हाथ, शिखा जल रही, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाक, भीषण आकृति, न मनुष्य न सिंह, नरसिंह जैसा प्रकट होकर के उसे दबोच लिया और वो ताकता रह गया, पेट फाड़ दिया। सब देवता लोग थक थक कांप रहे हैं, देखा ऐसा अद्भुत रब आज तक देखा नहीं, यह है अद्भुत। समझ गई? कृष्ण संबंधी ऐसा कोई चीज हो तो यह अद्भुत हो सकता है। पशुओं का मरना कभी कभी अद्भुत, देखो छोटा सा बालक 7 वर्ष का भी श्यामला सा साधारण सा बालक इतना मधुर, उसके चरण कमल इतने सुकोमल, लाल लाल उसमें सब खीन है, और गोवर्धन को गेंद की भांति उछाल दिया और कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन तक धरे रख दिया, ये अद्भुत नहीं है? ये सब मैया और बाप गोपियां सभी चकित हो गई, ये कैसे हो गया, किंतु उसकी मुस्कुराहट देख करके सभी भूल गए, बस उसी की तरफ में देखने लगे। नंद बाबा यशोदा जी हाथ जोड़ करके कहे नारायण जी इसकी रक्षा करें, आप भी इसको धारण कीजिए। सखा सब डर गए और वो लठिया लगा करके कहने लगे सभी लगा लो जैसे इस पर भार ना पड़े,
दबाव कम हो जाए।
गोपियां अपने नजरों पर गोवर्धन को रोक लिया, ये सब अद्भुत रस है, अद्भुत कोई चीज, किंतु कृष्ण संबंधी हो तो अद्भुत रस होगा, नहीं तो नहीं होगा।
हम जो भगवान के साथ अपना आप डेवलप करते हैं, क्या मधुर है या डांस है, तो गौण रस में तो नहीं डेवलप कर सकता कोई चीज, मुख्य रस में ही डेवलप करेगा।
गौण कभी कभी आ सकता है, आ सकता है कभी, किंतु पांचों में से कोई एक रस के साथ ही संबंध, रस नहीं भाव के साथ। पांच प्रकार की रति होती है, पांच प्रकार की रति में पांच प्रकार के संबंध होते हैं, इस जगत में भी वैसे ही है, कोई स्त्री के साथ में विवाहिता स्त्री प्रियतमा के रूप में, दोनों में दाम्पत्य सूत्र है, कोई बेटा है कोई मैया है, कोई भाई है या बहन है, ये सभी उसी के अंदर में है, और कोई दास है कोई प्रभु है कोई मित्र है, इसके अतिरिक्त और कोई भाव नहीं है, इन्हीं में से कोई एक कृष्ण के प्रति संबंध हो और बाकी सब गौण, कोई एक संबंध कृष्ण के साथ में, ये भी जो जिस विषय में एक्सपर्ट जानते हैं वो जोड़ेंगे, जो तुम्हारे हृदय का भाव क्या है, जैसे वैद्य रोग को निर्णय करता है डॉक्टर, चल इस पर हाथ रख दिया, एक डॉक्टर वैद्य पहले भारतीय चिकित्सा विज्ञान में कोई थे ऋषि, तो कोई लड़की गई उनके पास में, उन्होंने कहा लड़कियों का तो हाथ में नहीं देखता, महिलाओं का, उसमें एक धागा बांध दिया और धागा बांध करके उनके हाथ में दे दिया और धागे पर उन्होंने हाथ रखा, उसके नाड़ी चलती है तो कुछ कंपन होता है, उस कंपन से उसको बताया जिसको क्या है, ऐसा ऐसा चिकित्सक विज्ञान था। उसी प्रकार से जो सदगुरु होते हैं शिष्यों के नाड़ी को देखते हैं, उसकी भावना को देखते हैं, नाड़ी माने स्थूल है ना, स्थूल नहीं, उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से वो पढ़ लेते हैं सभी भाव को। यदि सुप्त होगा तो भी उसको समझ लेंगे, तुमको पता नहीं है उसके अंदर में क्या कृष्ण के प्रति भाव, आत्मा जब है उसका कैसा रूप है, उसका क्या नाम है, कैसा गुण है, कैसी कृष्ण के प्रति उसकी भावना है, सभी को वो जान लेते हैं, बतलाएंगे नहीं। वैसा जैसे चिकित्सक होता है वो बतलाएगा नहीं ये क्या रोग है कि क्या है, बहुत ठीक है तुम तो एकदम, तुमको कोई रोग नहीं है, और उसको चिकित्सा उत्साह भी ठीक रखते हैं, ऐसे वो ठीक रखते हुए और तुम्हारा सभी कुछ देख करके ठीक उसी रूप में साधन भजन लगाए, वैसा ही नाम, वैसा ही कीर्तन, वैसा ही संबंध, सभी का धीरे 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 बढ़ाते हैं। आजकल अधिकांश बहुत कम रेयर ऐसा है, इधर में लोग आएंगे ही नहीं, इधर थोड़ा सा परिश्रम और कठिन भाव है, बहुत कुछ छोड़ना होता है, वो कहीं नहीं, संसार का सब कुछ जैसा हूं मैं वैसा ही रखते हुए भगवान का भजन, सभी कुछ जितना गजबज बजबज शरीर में है लेकर के ही हम भगवान का भजन करें। इसलिए बस वाक्य सुहावने होते हैं, लोग उनका सुनते हैं किंतु कुछ होता है।
क्या
स्वीकृति होगा यदि वैसी कथाएं हो तो स्वीकृति होगा, और यदि नहीं होगा
कुछ तो जाते सुनने थोड़ा सा कीर्तन होता है,
और रामायण पे कथा करते कर रहे हैं,
रामायण पर कथा
की बातें बड़ी प्रेम से सुनाएंगे, ऐसी रो रो के सुनाएंगे।
यदि किसी को राम के प्रति भक्ति है तुलसीदास जैसी, और वो कथा कहेंगे यदि सुनेगा तो सुकृति होगी, और जो अद्वैतवादी है शब्द विन्यास अलंकार इत्यादि शब्दों में है और लोगों को केवल मनोरंजन के लिए ऐसा करता है तो उसके सुनने से सुकृति नहीं। यदि उसका पालन करके उसका भजन करता है, उसके सिवाय अनन्य भाव उसका और कहीं नहीं है और सचमुच में वो उनके प्रति आकृष्ट है, तब तो सुकृति हो जाएगी। किंतु जिसका ये नहीं है, प्रतिष्ठा है, रुपया पैसा उसका उद्देश्य है, तब तो फिर नहीं होगा, खुद ही नहीं पालन करता तो दूसरों को वो क्या जाएगा, इसलिए उसके ऊपर में निर्भर करता है।
तो नाम
जाए,
कैसे भी सुना
जाए,
थोड़ा
सा
असर करता है।
नाम हो तब तो, नाम यदि वक्ता और श्रोता दो हैं, अब जैसे हरिदास ठाकुर जी सिद्ध महात्मा है, उनके पास में वेश्या है, वो कर्म करने वाली, कोई भी संबंध नहीं है, और गई और सुना, शुद्ध नाम सुना तो शुद्ध नाम हरिदास ठाकुर जी, किंतु जो सुन रही है वो शुद्ध नाम नहीं है, आ रहा है समझ में,
अधिकार नहीं,
वो नाम तो शुद्ध कर रहे हैं हरिदास ठाकुर जी, किंतु इसके कान जड़िए हैं, है ना, तो जड़ कान से, जड़ नेत्र से, जड़ हाथों से, इंद्रियों से भगवान का चिन्मय नाम, इनमें रू देखा सुना ये नहीं जाता, तो भी चिन्मय नाम जो कह रहा है और डायरेक्ट ये सुन रही है, तीन रात लग गए, तीन रात में एकदम बदल गई, परम साधु हो गई। यदि दूसरा कोई हरिनाम करता हरदास ठाकुर के बदले और वो सुनती तो क्या होता, वो अपने चंगुल में उसे फंसा करके उसे डुबो देती, वो भी डूबता ये भी डूबता, तीन दिन भी नहीं लगता, एक दिन ही में गड़बड़ हो जाता है। देखो ये प्रभाव है। इसलिए जो हरिनाम कर रहा है और जो सुन रहा है, अब ये यदि उसके बदले में रूप सनातन होते और हरिदास ठाकुर जी यदि हरिनाम करते होते तो इन लोगों की क्या होता है, मूर्छित होकर के प्रेम में एक सेकंड एक नाम में ही गिर जाते। इले सब उसके ऊपर में निर्भर करता है। उसी तरह से कृष्ण आए अभी उतर कर अपने रूप में आए बंसी लिए हुए, हम लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वही कृष्ण सच्चिदानंद कृष्ण, हम कहेंगे कोई होगा क्योंकि वैसा उपकृति नहीं है। कृष्ण साक्षात आने पर भी हम उसकी उपेक्षा करते हम चले जाएंगे, और कोई महात्मा होंगे कृष्ण दूसरे वेश में भी होंगे तो उनको समझ लेंगे।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो भीड़ भाड़ इकट्ठी करने वाले लोग हैं इनके पास लोग जाके कभी मीट वगैरह छोड़ देते हैं, थोड़ी सी भागवत में उनकी दिलचस्पी होती है, फिर वो इधर शुद्ध सत्संग भी करने शुरू कर देती है, लेकिन शुरुआत उनकी यहीं से होती है, वहाँ से हुई है।
कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा होता है।
वो ऐसे कई लोग जो एकदम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, क्योंकि तब तो वो व्यक्तित्व और वक्ता की अलंकृत भाषा से ही चमत्कृत हुए थे, लेकिन थोड़ा सा रुझान भागवत की तरफ हो गया। फिर मैंने देखा है महाराज हमारे मठ में भी या हमारे उसी में कई लोग उसी तरह से आए।
महाराज मैं भी ऐसा ही एक कथा सुन के ही पहले विचार बदले, फिर
तो ऐसा होता है धीरे 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 ऊपर में जाएंगे।
घर में भागवत कराई थी कांसिल में, तब उसके बाद से विचार बिल्कुल बदल गए। अब वो भागवत वो अच्छी नहीं लगती अब, लेकिन अब वो दोबारा ही वो श्री बाबा करते हैं, श्री बाबा मथुरा वाले हैं, अब उनकी भागवत अब वो सुनने में अच्छी नहीं लगती महाराज। अब कितनी बार
जाने वहाँ तो
कभी दिल नहीं करता।
अभी वहाँ पर देखा जो बड़ी शांत शौकत हो रही, आप लोग जाइए आप लोगों को अच्छी नहीं
लगी, अब नहीं लगती
एक वर्ड भी अच्छा नहीं।
यहीं से ही कि वो भागवत पे कथा करने वाले थे ओझा जी, मैं तो अभी तक उनको भागवत का ही प्रवक्ता समझता था, लेकिन अब पता चला कि वो राम भक्त राम पे करते हैं। अब
इससे भी कोई हर्ज नहीं है, जैसे हम भी कभी कभी
महाराज,
किन्तु उन लोगों का तो कोई ठीक ही नहीं, ये कौन से क्या है,
संबंध तो नहीं जोड़ रहे ना, उनका है ना जुड़ा रहे वो,
उनका आराम दल एक नहीं ना, कौन सा उनका आराम नहीं है, उनका लोग
सब वो सब सब चीज देवी देवता सब सब तरफ से
एक तरह से अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवादी नहीं, किंतु तभी वो अद्वैतवादी मायावादी है। कभी कहेंगे जो भगवान में मिल जाएंगे, कभी कहेंगे जो है भगवान हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ, और भगवान की कथा पढ़ करके बतला करके और रोएंगे भी। इसलिए तो बतलाया कोटिश्व की महामूल, कोटि कोटि लोगों में से कोई एक भगवान की तरफ में आकृष्ट होता है, उसको गीता और भागवत पर विश्वास होता है। आने वाले लोग सभी धीरे 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 अनन्य हो जाएंगे, उन लोगों के श्रोता लाख जन्म भी अनन्य नहीं होंगे,
मतलब वो करते ही नहीं है तो होंगे कहते, खुद ही नहीं चाहते अनन्य होंगे।
एक डायरेक्शन भी नहीं देते ना महाराज, एक डायरेक्शन देते हैं वो लोग, वो बात वही कहते हैं जो ABCD की, बस ABC बस तीन की खाते हैं, उसके आगे
जो जैसा अच्छा लगे वैसा करें,
तो
जिसको जो
20,000 लोगों को 20,000 लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ABC का ही काम मत है, उतने लोगों को वो लोग उतना ही ज्यादा
कठिन सिखाएंगे तो वो भाग जाएंगे सब उधर।
ठीक बड़े गोस्वामी थे
ऐसा क्यों है कि शुद्ध भक्ति के इतने क्यों नहीं आते इतने लोग जबकि उसमें तो ज्यादा पोटेंशियल होनी चाहिए।
सब लोग एमए में क्यों नहीं एडमिशन ले लेते प्रारंभ से ही ABCD ना पढ़ करके क्लास 1, 2, 3 ना पास करके एक ही बार में बस चलो भाई एडमिशन ले लो एमए।
अब और कहीं पर इस प्रकार प्रश्न आपको किसने पूछा था तो आपने बताया लोहे के दुकान में इतने इतने स्टक रहता है डायमंड की दुकान इतना स्टक क्यों नहीं है।
सदा से ही ऐसा ही है। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत शक्तिशाली आचार्य थे उनके सभा में सब प्रकार के लोग आए किंतु अपनी कथाओं से सब प्रकार की शंकाओं को दूर करते हुए अद्वैत बात भी दूर करते हुए मायावाद और इधर उधर सब दूर करते 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 9 कंध तक ये दूर करने का झाड़ू और बहारी देना और उसके बाद 10 कंध में प्रवेश कराया और वहाँ पर दास्य सख्य बात्सल्य धीरे धीरे लेकर के मधुपुर तक में सबको रुचि दी। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था तरह तरह के लोग थे कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी प्रकार के लोग किंतु ऐसी कथाएं की और अपनी शक्ति में संचरित की कि अंत तक सब में भक्ति कर दी। ये सबके लिए ऐसा शक्तिमान आदमी होता है।
सुखदेव गोस्वामी जी की भागवत को अद्वैतवादी लोग मान रहे हैं। 99% महाराज सब अद्वैतवादी और
इसलिए शंकराचार्य ने उसको टीका नहीं लिखा नहीं।
पर उनके फॉलोअर बांच रहे हैं
अभी
तभी महाराज जी मैं बताऊं जितने भी हैं पक्के अद्वैतवादी हैं। डोंगरे महाराज जी थे महाराज जी इतनी अच्छी रोजों की कथा सुनाती मैं तो पहले कायल सा हो गया था लेकिन जब मैंने अध्ययन किया कई जगह साफ उन्होंने उसमें उसकी बातें क्या की मायावाद की बताई अद्वैतवाद की। मुरारी बाबू की राम कथा सुन के मैं कई बार वाकई जैसे कहते हैं ना ये अद्भुत विस्मित हुआ था लेकिन अब भी उनके लेटेस्ट में स्टेटमेंट सुन रहा हूँ वो ज्ञान और अद्वैत और मिल जाना एक वो बड़ी ऊंची चीज है उसमें उसको कभी आप नकारेंगे नहीं उसको हमेशा आदर देंगे बड़ा सम्मान देंगे ये बातें कह रहे हैं। और सभी का एक महाराज जी और किंकर जी हैं इतनी अद्भुत कथा कर रहे हैं इतनी अद्भुत
के ऊपर
मैं तो उनका फैन था इस जमाने में अब उनको अब सुनता हूँ तो पता चलता है कि हकीकत क्या है सभी। और या तो रामायण पे कथा कर रहे हैं या
रामायण
पे करते हैं दूसरी चीज भागवत पे कथा करते हैं लेकिन उद्देश्य मतलब ये लोग ये सब ये हमारे सनातन धर्म के जो मूल आधार है उन्हीं पे कथाएं करते हैं।
ठीक महाप्रभु के हम लोग फॉलोअर हैं महाप्रभु बस सबसे श्रेष्ठ चीज को देने के लिए हम लोग इसी की चेष्टा करते हैं। नवद्वीप जाने से महाप्रभु की महिमा कुछ कुछ मालूम पड़ती है भक्तों के सामने सारी चैतन्य से सामित पढ़ना हो जाएगा यदि महाप्रभु के धाम में वैष्णव के साथ जैसे कृष्ण लीला वृंदावन में संतों के साथ में भ्रमण करने से सारे ही भागवत वहां पर हो जाते हैं। जब तक अद्वैत बात का थोड़ा सा भी भाव रहेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अब वही लोग जो सुन रहे हैं हमारे यहाँ उनको सुनने में बहुत ही कम रुचि आएगी बहुत कम उसमें कोई कोई बिरले होंगे जिनको रुचि आएगी। ये लोग कहेंगे ये सांप्रदायिक है उनको कहने के लिए सांप्रदायिक नहीं है ये बड़े उदार
की राय है
जैसा करते हो कोई भी बात नहीं सब कुछ करो बस भजन करो
ये कहेंगे
भजन करने के लिए तो जो रूप
हम लोग कहेंगे ये नहीं, ये अनुकूल चीजों को ग्रहण करो, प्रतिकूल चीज को दूर करते हुए भगवान का भजन।
मैं कुछ दिन पहले यहाँ से मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया बाली, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वहाँ से कलकत्ते लौटकर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप में गया। वहाँ करीब करीब लगभग एक महीने आगे और पीछे से मिलाकर नवद्वीप धाम में रहा और उसके बाद वहाँ से अभी आया कलकत्ते होकर। भगवान की बड़ी कृपा रही, जैसी मैं आशा करता था उससे भी अधिक निर्विघ्न रूप से मेरी यात्रा सफल रही, सर्वत्र रही। और एक तो देखा जाए तो मधुर समापये सब घूम घाम करके नवद्वीप धाम मधुर धाम में आया और हजारों हजारों भक्तों के साथ में संकीर्तन करते हुए वहाँ की परिक्रमा की। साथ में बंगाल के तो रहने वाले तो है ही हैं, भारतवर्ष के कोने कोने से लोग, विदेशों से भी बहुत से लोग, सैकड़ों 100 करीब करीब वो लोग थे। बड़ी सुंदर रूप से परिक्रमा हुई, 15-16 हजार लोग, एक आदमी को कोई सिर दर्द की शिकायत नहीं आई। खाने पीने की शिकायत होगी किंतु हम लोगों के पास तक नहीं आई। रहने की काफी शिकायत थी, लोग छतों के ऊपर में जिसमें कि आकाश ही उनका तंबू था, जमीन जहाँ कहीं पाए यहीं कहीं भी किसी प्रकार से लेप लाट लिया। और हम लोगों के साथ में परिश्रम वाली कष्टदायक परिक्रमा थी किंतु उसमें कितना आनंद रहा, नहीं जाने बिना जो नहीं जाएगा वो नहीं समझता कितना उसमें आनंद, कष्ट में भी कितना आनंद है। एक यही चीज है पारमार्थिक, जिन डूबा जिन खो जाते पानिया गहरे पानी पैठ, इतना कष्ट रहने का सोने का और कभी किसी को मालूम नहीं पड़ता है। जो सुकुमारियां या सुकुमार व्यक्ति कभी जमीन पर चलते नहीं और वो लोग पैदल 10 माइल 12 माइल 15 माइल वो भी सूर्य की कड़ी धूप में पृथ्वी तैर रही है, फिर चलने से फफोले उड़ जाते हैं और उसमें बड़े आनंद के साथ में कीर्तन करते हुए। नवद्वीप धाम में एक विशेषता है कि प्रतिदिन गंगा का किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन हो जाता है, नवद्वीप धाम परिक्रमा में ट्राई हो जाता है। वृंदावन के परिक्रमा में जमुना जी को कभी कभी होता है और ये नवद्वीप को 9 तरफ से घेर रखी है, इसलिए कहीं भी जाइए तो जमुना को गंगा को पार करना पड़ेगा। उस गंगा में है क्या, जितनी भारतवर्ष की नदियां हैं जमुना, वृंदावन में मानस गंगा है, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, अलकानंदा, मंदाकिनी, सारी नदियां वहां अंतर रूप में मिली हुई है। सारे देवता जैसे वृंदावन में हैं, वैसे सारे देवता, सारे भगवान के अवतार सब वहां पर एक धाम करने। आजकल सतयुग में पुष्कर स्थित था, त्रेता में गंगा इत्यादि तीर्थ थे, और द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में मायापुर एक धाम का आश्रय करने से सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि वृंदावन का भी, वृंदावन में अपराध का विचार है। निरपराधी आदमी जिसको अधिक अनर्थ भरे पड़े हैं, शरीर में मैं का भाव ये अनर्थ है, स्वरूप का भ्रम। अभी हम लोग सोच रहे हैं ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप कृष्णदास है, इसको भूल बैठे हैं। कृष्ण का स्वरूप परतत्व का स्वरूप ज्ञान नहीं। परतत्व कौन है? बस मुश्किल में ये लोग इसको समझते हैं, ये कृष्ण ही हमारे, और कृष्ण में भी राधा कृष्ण हमारे परमाराध्य हैं। यू कैन सिट देयर हियर, नो प्रॉब्लम। Now you can pick up some Hindi.
This is my Hindi lesson.
राधा कृष्ण का स्वरूप, राधा कृष्ण, अकेले कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है। यदि कृष्ण का भी भजन एकांतिक रूप में किया जाए तो अधूरा रहेगा, इसलिए राधा कृष्ण हमारे राधा कृष्ण इज अवर इष्ट देव, नॉट ओनली कृष्ण। संसार में ऐसे बिरले लोग होंगे जो ऐसे होंगे, सब देवता देवी इत्यादि को लेकर, यहाँ तक कृष्ण के अवतार को भी लेकर के सबको, हम लोग सबको प्रणाम करते हैं, किंतु इष्ट देव बस राधा कृष्ण पे आते हैं, और इष्ट देव इज ओनली राधा कृष्ण कंजुगल। ऐसे बिरले जगत में होंगे, बहुत बिरले। तो ये स्वरूप का भ्रम। दूसरा असत कृष्ण, जीव का स्वरूप में भ्रम। भक्ति किसको कहते हैं? इसमें स्वरूप में भ्रम। देवता देवी की उपासना के साथ साथ में राधा कृष्ण का करेंगे, या उन्हीं की उपासना को राधा कृष्ण की उपासना मान लेंगे, इसे भक्ति का स्वरूप भ्रम भी। सम डाउट इन कृष्ण स्वरूप, जीव स्वरूप, भक्ति स्वरूप एंड माया स्वरूप। माया को हम लोग अपना स्वरूप समझ लेते हैं और स्वरूप को माया समझ लेते हैं। ये चार प्रकार के भ्रम है, इससे हृदय दुर्बल हो जाता है और फिर हम लोग अपराध कर बैठते हैं। इसलिए वृंदावन में ये विचार है, यदि अपराध करेंगे और भजन करेंगे तो अपराधी का कृष्ण प्रेम नहीं होगा। इफ एनी वन डूइंग भजन बट हैविंग सो मच अनर्थ एंड अपराध ऑफेंसेस, ही कैन नॉट ऑब्टेन कृष्ण प्रेम। बट इन नवदीप धाम, इफ एनी वन इज टेकिंग शेल्टर ऑफ नवदीप धाम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, इजिली they can cross all kinds of doubts, anarth, abad, and everything. यदि हम लोग नवदीप धाम का आश्रय करें तो मानो वो धाम और महाप्रभु जी कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों हाथों से देने के लिए, लेने वाले नहीं है, ऐसे कृपालु हैं। यही राधा कृष्ण दोनों मिलकर के हुए हैं। तो ऐसे धाम में हम लोग गए, हरी कथा में सभी लोग मत्त हो जाते, खाना पीना सभी लोग भूल जाते थे, सभी लोग भूल जाते थे, परिश्रम करके आए हैं, हम लोग थक जाते थे, वो लोग नहीं थकते, आ करके बैठे हुए हैं, जो महाराज जी आएंगे तो हरी कथा बोलेंगे। सभी लोग जाते थे और मैं नहीं जाता तो लोग निराश हो जाते थे, तो फिर उठ उठ करके जाने लगते थे। आज हम उसमें से आप लोगों को रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का मिलन कैसे हुआ उसमें थोड़ा सा हम एक दिग्दर्शन देते हैं। दिग्दर्शन मैंने क्या, एक साधन से आउटलाइन, जैसे ये चंद्र इस पेड़ की इस डाल पर है, वहां से करोड़ों मील दूर है किंतु वो डाल पर ही दिखता है यहाँ से। किसी को कहते हैं शाखा चंद्र ने, बहुत दूर से इसको बतला रहे चैतन्य महाप्रभु। संन्यास लिया हम लोग निद्या घाट में गए, यहाँ पर कि महाप्रभु जी ने अपनी प्रिया विष्णु देवी को छोड़ दिया, रोती हुई मैया को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा उसका वहां पर वर्णन हमने किया था। वो वर्णन सुनकर के ऐसा कौन है जो रोएगा नहीं। महाप्रभु जी जब गया से लौटे, दो तीन वर्ष हो गया, पागल हो गए कृष्ण प्रेम में, और पछाड़ खा करके हा कृष्ण कहते और पछाड़ खा करके गिर जाते। आंखों से कभी आंसू उनके सूखे नहीं। मैया डर गई, इसको मृगी का रोग हो गया, इलाज करवाती थी। बड़े बड़े ओझा लोग आए, बड़े बड़े वैद्य लोग आए। एक दिन श्रीवास पंडित गए, बड़े वृद्ध थे, बड़े विद्वान थे, भक्त थे। मैया ने कहा जैसे हमारे बेटे को मृगी रोग हो गया, जब तक गिर पड़ता है और कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है, क्या हो गया? सब लोग कहते हैं इसको रोग हो गया है कोई। अरे रोग हो गया खाता है? अरे इसको तो कृष्ण प्रेम है, ये तो जगत का उद्धार कर देगा, इसको साधारण मत समझो, ये रोग नहीं। ऐसा तो गोपियों को हुआ करता था, और तो किसी को होता नहीं है। तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसा बेटा तुमको हुआ, रोग मत समझना। उन्होंने कहा जैसे आप यदि ऐसा नहीं कहते तो कल मैं डूब करके गंगा में मर जाती। सब लोग कहते हैं इसको मृग्यु का रोग हो गया, नहीं नहीं इसको कृष्ण। माँ प्रभु दो तीन वर्षों तक अपनी स्त्री से नहीं बोले। विवाह हो गया, दो वर्ष हो गया, अभी नई स्त्री आई, बंगाल भर में सब सुंदरी, और उसे बातचीत नहीं करते, सब समय प्रेम में बेसुध रहते हैं। उसको डर, जबकि वो गिर जाते हैं तो वो डर जाती है। आज शाम को उसके घर में गई महाप्रभु जी, उसके घर में गए श्रृंगार करके, कभी श्रृंगार नहीं किया, श्रृंगार किया शाम को जिस दिन जाने को है। केश को सवारा, उसमें सुगंधित चीजों को लगाया, पान खाया, आज तक बहुत दिन पानी नहीं खाया, आज पान खाए, पान की एक बीड़ी ली, एक सुंदर फूल की माला ली, मालती, अपने स्त्री के पास में गए, उसके केसों को आज संवारा और माला को उसके सिर में बांध दिया, अपने हाथों से तांबूल की बीड़ी उसको दी। उसको तो प्रसन्न होना चाहिए किंतु प्रसन्न नहीं हुई, हृदय कांपने लगा। आज ये क्यों, आज इस प्रकार का परिवर्तन क्यों? यदि कोई दिया प्रदीप, घी का दिया हुआ या तेल का दिया हुआ प्रदीप यदि जलता है और उसकी लौ धप धप करे तो यह भी बुझने वाला है, धप धप और धप। कहीं ऐसा ही तो हमारा सौभाग्य से थप करके बुझ तो नहीं जाएगा सदा के लिए। आज मैं स्नान करने के लिए गई, विवाह काल का नाक का नथ था वो आज खो गया पानी में, रास्ते में मुझे अंगूठे में चोट आ गई और यहाँ से रक्त निकलने लगा। क्यों आज शाम को ये सब देख रही हूँ? कहीं सदा के लिए हमारा सौभाग्य तो बुझ नहीं जाएगा? रोने लग गई, आनंद नहीं हुआ। उस समय में महाप्रभु जी ने देखा कि अब अधिक खिलाना उचित नहीं, योग माया को स्मरण किया। ये विष्णुप्रिया जी कौन है? सप्तभामा के प्रकाश हैं। लक्ष्मी प्रिया रुक्मिणी के प्रकाश हैं। इसलिए वृंदावन वाली योग माया को बुलाया और इनको अचेत कर दिया। इनके पलकों पर लाखों मन के पत्थर से भी अधिक भार वो चढ़ा दिया। सुना नहीं चाहती, पलकों को हाथ से उठा रही और पलकें मानती नहीं। अंडरस्टैंड समथिंग? संकेतन महाप्रभु वांटेड टू टेक संन्यास, रिनाउंस ऑर्डर ऑन द इवनिंग। से प्लीज बी एवरीवन ऑल विलेजर्स and he took loki milk, loki you know, milk and all these things, and told her mother to cook it, loki. She prepared and offered to Thakurji and gave Mahaprabhu too. Very, it was so delicious. Chaitanya Mahaprabhu has no concern with his wife. She was so beautiful, so kishori, but for 2-3 years he has no talk even with her. Today he went to took bath and he got a injury here. He went to took bath in Ganges and his
nothing
but love.